بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتا مترو، آج آپ سورہ مائدہ کی آیت کرمانک 65، 66 اور 67 کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ تلاوت کا شرح پراپت کیا ہے قاری صدیق منشاوی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، يا والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتہن کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور یدی آسمانی کتاب والے ایمان لے آتے اور ایشور سے ڈرتے تو ہم ان کے پاپوں کو کشما کر دیتے اور انہیں انکمپاؤں کے باغوں میں پروشت کر دیتے، اور یدی وے توریت، انجیل اور جو کچھ ان کے پالنہار کی اور سے ان پر اتارا گیا تھا سب کو قائم کرتے، अर्थात उन पर कार्यबद्ध रहते तो निसंदेह वे अपने ऊपर और पैरों के नीचे से ईश्वरीय विभूतियां प्राप्त करते। उनमें से एक गुट मध्यमार्गी है, परंतु अधिकांश लोग बुरे कर्म करते हैं। हे पैगंबर, आपके पालनहार की ओर से जो आदेश आप पर उतारा गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और यदि आपने ऐसा न किया तो मानो आपने उसके संदेश को पहुंचाया ही नहीं। और जान लीजिए कि ईश्वर आपको लोगों से सुरक्षित रखेगा, निसंदेह ईश्वर काफिरों का मार्गदर्शन नहीं करता।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज शनिवार है, नवंबर की 21, रबीउल सानी की 5 और आज़र माह की 1 तारीख। कार्यक्रमों की रूपरेखा आप नोट कर सकते हैं। पहले हम आपको समाचार सुनाएंगे, उसके पश्चात राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम आप सुनेंगे। राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम के उपरांत साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण पेश किया जाएगा, और सभा के अंत में आप सुनेंगे हमारा एक अन्य साप्ताहिक कार्यक्रम नया सवेरा। तो श्रोताओं, ये थी रूपरेखा। अब कुछ ही क्षणों में समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान का कहना है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी इधर उधर की बातें करने के बजाय काम की बात करें। अमेरिका के संभावित विदेश मंत्री ने परमाणु समझौते में वापसी का संकेत दिया है। ब्रिटिश मीडिया ने रूसी राष्ट्रपति के कैंसर ग्रस्त होने का दावा किया है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति का कहना है कि कोरोना वायरस से पहले ही भारत धार्मिक कट्टरता जैसे वायरस का शिकार हो चुका था। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी से ये उम्मीद की जा रही है कि वे इधर उधर की बातें करने के बजाय परमाणु समझौते और संयुक्त आयोग में अपने वचनों पर पूरी तरह प्रतिबद्धता के लिए कदम उठाएं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता खतीब जादे ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ ईरान के सहयोग के बारे में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा, इन तीनों देशों के गैर जिम्मेदाराना दृष्टिकोण सही नहीं है। खतीबजादे का कहना था कि ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियां पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परिधि में की जा रही हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता परमाणु समझौते में यूरोपीय देशों के वचनों की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि परमाणु समझौते से अमेरिका के निकलने, प्रतिबंधों के दोबारा लागू होने, परमाणु समझौते में वर्णित प्रतिबंधों के हटने के बाद ही ईरान को आर्थिक लाभ पहुंचाने के बारे में यूरोप के उल्लंघनों की वजह से ईरान ने परमाणु समझौते के 26वें और 36वें अनुच्छेद के अनुसार परमाणु कदम उठाए हैं, जो कि परमाणु समझौते के पूर्ण रूप से अनुरूप हैं। अमेरिका के संभावित नए विदेश मंत्री ने परमाणु समझौते में वापसी का समर्थन करते हुए एक शर्त रखी है। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन शासन के संभावित विदेश मंत्री क्रिस क्रूस ने कहा है कि वो परमाणु समझौते में अमेरिका की सशर्त वापसी का समर्थन करेंगे। उनका कहना है कि अगर ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने और क्षेत्रीय देशों में उसके प्रभाव को कम करने के लिए कोई उपाय किया जाता है तो वाशिंगटन परमाणु समझौते में वापस लौट सकता है। क्रिस क्रूस का कहना था कि इससे पहले कि समझौते में अमेरिका की वापसी की बात की जाए, वाशिंगटन को चाहिए कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय प्रभाव को सीमित करने के लिए कोई उपाय खोजा जाए। गौरतलब है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मई 2018 में परमाणु समझौते से एक तरफा तौर पर निकल गए थे, जिस पर सन 2015 में अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन ने हस्ताक्षर किए थे। काबुल में स्थित ईरान के दूतावास में आज एक मिसाइल आकर गिरा। बताया गया है कि इससे किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। काबुल से हमारे संवाददाता के अनुसार अफगानिस्तान की राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आज कई मिसाइल आकर गिरे। काबुल में स्थित इस्लामी गणतंत्र ईरान के दूतावास ने बयान जारी करके बताया है कि आज एक मिसाइल दूतावास की इमारत में के आंगन में आकर गिरा। बयान में बताया गया है कि इस मिसाइल से इमारत के कुछ भाग को नुकसान पहुंचा, किंतु कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ईरानी दूतावास के सभी कर्मचारी और अधिकारी सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी कड़ी निंदा की है। याद रहे कि आज शनिवार की सुबह अफगानिस्तान की राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में कई मिसाइल आकर गिरे, जिनमें 14 रॉकेट अमरीकी दूतावास के पास गिरे। अफगानिस्तान की सरकार ने इन मिसाइलों से होने वाली क्षति के बारे में बताया है कि इससे 8 लोग मारे गए और 13 अन्य घायल हो गए। इसी बीच तालिबान के प्रवक्ता ने कहा है कि शनिवार को काबुल में हुए हमले से तालिबान का कोई लेना देना नहीं है। ईरान में पिछले 24 घंटों के दौरान 479 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटों में 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए, जबकि 479 लोगों की मौत हो गई। सीमा सादात लारी ने देश में कोरोना ताज़ा बताया कि कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 13,260 नए मामले सामने आए, जिनमें 3,044 को अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी अन्य को आवश्यक निर्देशों के साथ होम आइसोलेशन में भेज दिया गया। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि पुतिन कैंसर से जूझ रहे हैं। ब्रिटेन के एक मीडिया हाउस ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कैंसर से पीड़ित हैं और फरवरी महीने में उनका ऑपरेशन भी हुआ था। फार्स ने रिपोर्ट दी है कि ब्रिटेन के समाचार पत्र डेली मिरर ने दावा किया है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन जहां पहले से ही पार्किंसन रोग से जूझ रहे थे, वहीं अब वो कैंसर जैसी घातक बीमारी का शिकार हो चुके हैं। ब्रिटिश मीडिया ने यह दावा राजनीतिक टीकाकार वैलेरी सोलोवी द्वारा कही गई बातों के आधार पर किया है। बताया गया है कि वैलेरी सोवोरी पूर्व में मॉस्को में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के जनसंपर्क के निदेशक थे। डेली मिरर ने लिखा है कि उन्होंने बताया है कि उनके कई सूत्र क्रेमलिन हाउस में मौजूद हैं और उन्होंने ही पुतिन के कैंसर पीड़ित होने की पुष्टि की है। याद रहे कि यह पहली बार नहीं है कि जब वैलेरी ने इस तरह का दावा किया है। उन्होंने कई सप्ताह पहले भी इस तरह का दावा किया था, जिसको क्रेमलिन ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल ने राष्ट्रसंघ से इस देश के परिवेष्टन को समाप्त कराने की मांग की है। अल मसीरा के अनुसार मोहम्मद अल हुसी ने राष्ट्रसंघ से यमन के घेराव को समाप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने यमन की संकटग्रस्त स्थिति के बारे में राष्ट्रसंघ के महासचिव के शुक्रवार के बयान का स्वागत किया। यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के सदस्य ने इस देश के संकटग्रस्त लोगों की अधिक से अधिक सहायता करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस समय यमन भूख के संकट से त्रस्त है। अलहुसी का कहना था कि संकट ग्रस्त लोगों तक सहायता न पहुंचने के कारण स्थिति बहुत ही जटिल होती जा रही है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति के बावजूद यमन की मदद के लिए भेजे जाने वाले जहाजों को रोका जा रहा है। मोहम्मद अलहुसी ने कहा कि इस बारे में राष्ट्र संघ को तत्काल नोटिस लेना चाहिए। याद रहे कि यमन पर हमला करने वाले गठबंधन ने तेल उत्पादों से भरे 15 जहाजों को रोक लिया है और इनसे सामान उतरने नहीं दिया जा रहा है। ये सब यमन की जनता को परेशान करने के उद्देश्य से हो रहा है। ज़ायोनी शासन के आतंकी सैनिकों द्वारा अलखलील इलाके पर किए गए हमले में एक फिलिस्तीनी बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। तस्नीम की रिपोर्ट के अनुसार फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में स्थित अल खलील नामक शहर पर आतंकी ज़ायोनी सैनिकों द्वारा की गई गोलीबारी में एक फिलिस्तीनी बच्चा घायल हुआ। याद रहे कि ज़ायोनी शासन के सैनिक फिलिस्तीन के विभिन्न इलाकों पर कब्जा करने के उद्देश्य से आए दिन हमले करते रहते हैं। इसराइली सैनिकों द्वारा हर दिन फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों पर किए जाने वाले हमलों में कोई न कोई शहीद, घायल और बंदी बनाया जाता है। अभी भी लगभग 6,000 से अधिक फिलिस्तीनी इसराइल की जेलों में कैद हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान शांति प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और दोहा से भी वार्ता जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अफगानिस्तान दौरे के बारे में उन्होंने कहा कि स्थिति में काबुल दौरे का उद्देश्य ये संदेश दोहराना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया को तार्किक परिणाम तक पहुंचाने में गंभीर है। दूसरी ओर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय मुसलमानों के जनसंहार के बारे में जेनोसाइड वॉच के प्रमुख के हालिया बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जेनोसाइड वॉच के प्रमुख का बयान हमारे दृष्टिकोण की पुष्टि है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना था कि इस्लामाबाद पहले ही विभिन्न फोरम्स पर इन सारी स्थितियों को बयान कर चुका है और अपनी चिंताओं को व्यक्त करता चला आ रहा है। उनका कहना था कि हमारी चिंता कल भी सही थी और आज भी सही है कि कश्मीर में हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि कोरोना से पहले ही देश धार्मिक कट्टरता से संक्रमित हो चुका था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने अपना एक ताज़ा बयान में कहा है कि कोरोना वायरस संकट से पहले ही भारतीय समाज दो अन्य महामारियों, धार्मिक कट्टरता और आक्रामक राष्ट्रवाद का शिकार हो चुका था, जबकि इन दोनों के मुकाबले देश प्रेम अधिक सकारात्मक अवधारणा है क्योंकि ये सैन्य और सांस्कृतिक रूप से रक्षात्मक है। उन्होंने इस बात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की नई पुस्तक के विमोचन के मौके पर कहा। हामिद अंसारी ने कहा कि 4 वर्षों की अल्पावधि में भी भारत ने एक उदार राष्ट्रवाद के बुनियादी नजरिए से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक ऐसी नई राजनीतिक परिकल्पना तक का सफर तय कर लिया जो सार्वजनिक क्षेत्र में मजबूती से घर कर गई है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
श्रोताओ, राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहती का सलाम स्वीकार कीजिए। श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर भी बच्चों के खिलाफ जानी शासन के अपराध यथावत जारी हैं और उसने ताजा हमले में एक मकान पर मिसाइली हमला किया जिसमें पूरा मकान ध्वस्त हो गया और मकान के कुछ सदस्य शहीद भी हो गए। अमेरिका में जहां सत्ता की खींचतान जारी है, वहीं वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। जो समाचार प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और राष्ट्रसंघ में अमेरिका के पूर्व राजदूत निकी हेली वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार होंगे। भारत नियंत्रित कश्मीर में DDC चुनावों के संबंध में होने वाली गतिविधियां जहां जोरों पर हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार न्याय और ईमान की सरकार है।
मोदी जी की सरकार इंसाफ की सरकार है, ईमान की सरकार है।
श्रोताओ, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर भी बच्चों के खिलाफ जानी शासन के अपराध यथावत जारी हैं और उसने ताजा हमले में एक मकान पर मिसाइल फायर किया जिससे पूरा मकान ध्वस्त हो गया और मकान के कुछ सदस्य शहीद भी हो गए। याद रहे कि इसराइल को मानवाधिकार का राग अलापने वाले देशों का व्यापक समर्थन प्राप्त है और इसी समर्थन के कारण वो मानवाधिकार का हनन करने में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लेता। इब्राहिम अहमद की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही मोहम्मद अली कौमी।
فَلَطَالَمَا ارْتُكِبَتْ مَجَازِرٌ بِحَقِّ الْأَطْفَالِ
फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की निर्दयी कार्यवाही ऐसा अपराध है जो हर दिन हम देख रहे हैं। इन अपराधों की तस्वीरें पूरी दुनिया में प्रकाशित हो रही हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। कोई भी फिलिस्तीनी बच्चों की मुक्ति के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के मौके पर फिलिस्तीनियों ने बल देकर कहा है कि जो कुछ फिलिस्तीनी बच्चों के साथ हो रहा है उसका वर्णन मीडिया में नहीं किया जा सकता। आज अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस है, इस अवसर पर विश्ववासियों ने जश्न मनाया। हम गजा और फिलिस्तीन के भीतर से बल देकर कहते हैं कि फिलिस्तीनी बच्चों का परिवेष्टन बहुत हो गया। फिलिस्तीनी बच्चों के बाल्यकाल का अंत हो रहा है। उन्हें यात्रा करने व इलाज कराने की इजाज़त नहीं है, जबकि यात्रा करना, उपचार कराना, खेलना और शिक्षा बच्चों का अधिकार है। एक फिलिस्तीनी बच्चा, आज़ादी हमसे छीन ली गई है, हम भी आज़ादी और सुरक्षा चाहते हैं, घेराबंदी को खत्म होना चाहिए।
हम विश्व के दूसरे बच्चों की तरह शांति व सुरक्षा के साथ रहना चाहते
हैं।
सवारिक परिवार के दुर्दशा अतिग्रहणकारियों के अपराधों का एक नमूना है। ज़ायोनी शासन का मिसाइल घर पर गिरा और घर तबाह हो गया और परिवार के कुछ सदस्य शहीद हो गए। ये तस्वीर फिलिस्तीनियों के मन में बाकी रहेगी और इसराइल के अपराधों की सूची और लंबी हो गई। जब भी इसराइल फिलिस्तीनी गुटों के मुकाबले में खुद को अक्षम देखता है तो वो बच्चों के खिलाफ अपराध करता है।
اليوم نقول للاحتلال كفى
हम अतिग्रहणकारियों से कहना चाहते हैं कि अपराध बहुत हो चुका है, ये बच्चे किसी के लिए खतरा नहीं।
मैं विश्व के देशों का आह्वान करती हूँ कि वे ज़ायोनी शासन के मुकाबले में खड़े हो जाएं ताकि वे जमीनों को हड़पने और कॉलोनियों के निर्माण से बाज आ जाएं।
هنا سجل الفلسطيني
ये वो जगह है जो इसराइली अपराधों की गवाह रही है। यहाँ के बारे में फिलिस्तीनियों को कटु अनुभव है, लेकिन अमरीकियों, पश्चिमियों और कुछ अरबों ने मानवता को भुला दिया है। गजा से IRIB के लिए इब्राहिम अहमद की रिपोर्ट।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा।
अमेरिका में जहां सत्ता की खींचतान जारी है, वहीं वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनावों के उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। जो समाचार प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार अमेरिका के वर्तमान विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और राष्ट्र संघ में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री निकी हेली वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे। इसी बीच सूचना है कि जल्द ही सत्ता से डोनाल्ड ट्रंप की विदाई हो जाएगी। न्यूयॉर्क से कामरान नजफजादे की रिपोर्ट पेश करें, साथ ही सैयद मैसम अब्बास।
ट्रंप की महिला वकील रोडी जुड़ियानी का अभी सिर्फ ये काम है कि वे रोज ये प्रकाशित करें कि सिस्टमैटिक तरीके से और भारी पैमाने पर धांधली हुई है।
It is systemic fraud.
लेकिन दूसरी ओर मर्फी सस्ता हस्तांतरित करने के आयोग की जिम्मेदार हैं। उनके एक हस्ताक्षर से ट्रंप से बाइडेन को सत्ता हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति ने इस प्रकार के कार्य की अनुमति नहीं दी है, इसलिए उन्होंने भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अभी से वो नए काम की खोज में लग गई हैं और केवल शीघ्र ट्रंप की सत्ता की विदाई तक वो यहाँ हैं। हालांकि आजकल जिन लोगों की अधिक बात हो रही है उनमें से एक बर्नी सैंडर्स हैं कि बाइडेन ने उनसे कहा है कि वो उनके विदेश मंत्री बन जाएं।
So at the end of it, Secretary Kerry,
रैंडी शर्मन और हिलरी क्लिंटन दोनों राष्ट्र संघ में अमेरिकी राजदूत की उम्मीदवार हैं।
All set. Good afternoon.
विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और राष्ट्र संघ में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली वर्ष 2024 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनेंगे, अलबत्ता ट्रंप के समर्थन से। विलियम पेंस और सुजैन राइस अमेरिकी विदेश मंत्री के पद की उम्मीदवार हैं। अगले दिनों इस आवाजाही को लेकर बड़ी खबरें सामने आएंगी। कामरान नजफजादे, IRIB, न्यूयॉर्क।
भारत नियंत्रित कश्मीर में DDC चुनाव के संबंध में होने वाली गतिविधियां जहां जोरों पर हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की प्रशंसा का पुल बांधते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार न्याय और ईमान की सरकार है। साथ ही पत्रकारों के साथ वार्ता में उन्होंने पाकिस्तान की तीव्र आलोचना की। श्रीनगर से सिप्ते मोहम्मद हसन।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर में DDC इलेक्शन को लेकर तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और भाजपा के दिग्गज नेता आजकल गाठी की यात्रा पर हैं और वो लोगों से ये कह रहे हैं कि जो अलायंस बना है उनके अनुसार वो लोगों के हित में नहीं है। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पीपल्स अलायंस पर वार करते हुए कहा कि इन्होंने उनके अनुसार सिर्फ और सिर्फ अपने घर बनाए हैं और उन्हें से हिसाब लिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा,
टाइम में लूट को छूट नहीं हो सकती और ये जो अलायंस बना है ये अलायंस जो है वो केवल अपने को बचाने के लिए है, इलेक्शन के लिए नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने बड़े गुनाह किए हैं। ये गुनाहों के सब देवता और लोग हैं, तो इन गुनाहों के देवताओं को कहां जाना होगा इसके बाद ये उनको भी मालूम। देखिए, पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री, पाकिस्तान खुद अपने लोगों को भी मार रहा है, दूसरों जगहों पर भी आतंकवाद और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और ऐसी ताकतें जो ताकतें की इंसानियत की दुश्मन हो, इंसाफ की दुश्मन हो और सही इंसानी वसूलों की दुश्मन हो, उन ताकतों को कोई भी मदद नहीं कर सकता। और मोदी जी की सरकार इंसाफ की सरकार है, ईमान की सरकार है और इकबाल की सरकार है और ऐसी ताकतों को का खात्मा खत्म कर। देखिए, पाकिस्तान अगर लीपापोती करने की कोशिश करे तो दुनिया उसे नहीं मानेगी।
इस बीच पीपल्स अलायंस ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर प्रशासन पर आरोप लगाया है कि वो उनके कैंडिडेट्स को कंपेनिंग करने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा के जितने भी समर्थक दल हैं उनको फ्री हैंड दिया गया है, परंतु दूसरी तरफ हमारे लोगों को लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो भी हमने कैंडिडेट्स रखे हैं उन्हें भी अपने क्षेत्र में जाने की जरूरत है, परंतु उन्हें सुरक्षा के बहाने सिर्फ और सिर्फ घरों में बंद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ इसका विरोध कर रहे हैं बल्कि हम ये बताना चाहते हैं कि यहां पर एक सिलेक्टेड इलेक्शन की तैयारी हो रही है। इस बीच कोरोना केसेस में बढ़ोतरी के पेश नजर दिल्ली में जो स्थिति है वो इंतहाई गंभीर बताई जाती है, और दिल्ली प्रशासन ने मास्क न लगाने वाले को जो जुर्माना रखा है वो 2000 है। और आज दिल्ली के सड़कों पर यह देखा गया कि वहां पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां मास्क को जरूरी बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा सक्रिय थे। इस हवाले से भी पुलिस और अन्य सुरक्षा बल सड़कों पर देखे गए।
साइड में लगाइए, साइड में
मास्क ना लगाने के साथ साथ अगर मास्क तरीके से नहीं लगा होगा तो भी चला
जो ना यार समझे
बताया सिंगल अगर यहाँ पर कोई ड्राइव कर रहा है तो उसका चलान यहाँ नहीं काटा जा रहा है। अगर
सर फोन अटेंड ऐसे भी हो सकता है विद मास्क, प्रॉपर मास्क नहीं था सर चलान।
इधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, और एक बार फिर पूंछ के विभिन्न सेक्टरों में आर पार गोलाबारी हुई है, परंतु अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। सिप्त मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा नया सवेरा, पर उससे पहले आप सुनिए साप्ताहिक कार्यक्रम ईरान भ्रमण।
ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। इस कार्यक्रम में हम नेशापुर और वहां पर जन्मी कुछ हस्तियों के बारे में चर्चा करेंगे।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने आपको ये बताया था कि ईरान का निशापुर नगर कई विश्वविख्यात साहित्यकारों, इतिहासकारों, तत्वदर्शियों एवं कवियों की मातृभूमि रहा है। अति प्राचीन नगर होने के कारण निशापुर में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं। यहाँ पर महान विद्वानों की कब्रें भी हैं। निशापुर की प्राचीनता के कारण विदेश से हजारों लोग इसे देखने ईरान आते हैं। पिछले कार्यक्रम में हम ये भी आपको बता चुके हैं कि प्राचीन निशापुर नगर वर्तमान निशापुर नगर के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन निशापुर नगर का क्षेत्रफल लगभग 350 हेक्टेयर है, जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो खंडहर के रूप में अब बाकी हैं।
नगर के इस भाग का संबंध सासानी काल से लेकर निशापुर पर मंगोलों के हमले तक के काल से संबंधित है। इस नगर में पुरातात्विक शोध के दौरान ये पता चला कि निशापुर की बहुत सी प्राचीन इमारतें खंडहरों के रूप में हैं, जबकि कुछ अन्य भूमिगत हो चुकी हैं। एक काल्पनिक इलाका जिसका सही क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है, वर्तमान नगर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों के आंचल में स्थित है। यहाँ पर मौजूद कुछ टीलों और खंडहरों के नाम इस प्रकार हैं: कोहंदीस, आल्क, अरसलान, सब्जपोश, शादियाख, बाजार, मदरसे टीला, कारजी टीला, सुल्तान मैदान टीला, तलाई टीला, नसीराबाद टीला, कलाते मोहम्मद खान टीला, हिसारैनो टीला, कनात टीला और ताकिस्तान टीला आदि।
यहाँ के कुछ खंडहर तो पूरी तरह से जमीन के नीचे दब गए हैं, जबकि उनमें से कुछ के ऊपरी भागों को देखा जा सकता है जो वहाँ पर होने वाले खेती या अवैध उत्खनन के कारण दिखाई देते हैं। निशापुर का प्राचीन नक्शा पूरी तरह से सटीक नहीं है, इसी कारण पुरातत्ववेत्ता प्राचीन निशापुर नगर की सीमाओं को निर्धारित करने में सफल नहीं हो सके। वर्तमान नक्शा निशापुर पर मंगोलों के हमले के समय से पहले का नहीं है, बल्कि उसी काल से संबंधित है।
नेशापुर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद बहुत ही सुंदर है। ये जामा मस्जिद नगर के केंद्र में स्थित है। मस्जिद में लटके एक शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण सन 889 हिजरी कमरी में कराया गया था। सुल्तान हसन बायकुरा के शासनकाल में पहलवान अली बिन बायजीद ने करवाया था। बाद में सफवी शासनकाल में नेशापुर की जामा मस्जिद की मरम्मत की गई थी। सफवी काल में नेशापुर की जामा मस्जिद की जो मरम्मत की गई थी, उसके कारण इस मस्जिद की प्राचीन बहुत सी चीज़ों की पहचान मिट सी गई। वर्तमान समय में इसमें 2 हॉल तथा 3 द्वार हैं, जो मस्जिद के उत्तर, पूर्व और पश्चिम स्थित हैं। निशापुर की जामा मस्जिद का कुल क्षेत्रफल लगभग 7083 वर्ग मीटर है, जबकि इसका भूमिगत भाग 4377 है। इस मस्जिद का मुख्य द्वार उत्तर की ओर है। मस्जिद के मुख्य द्वार के दोनों ओर शाह अब्बास प्रथम द्वारा लिखित शिलालेख हैं, जो सन 1021 हिजरी गमरी से संबंधित हैं।
मित्रों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको विश्वविख्यात विद्वान उमर खय्याम के मज़ार के बारे में बताएंगे। उनका पूरा नाम गयासुद्दीन अबुल फतह उमर इब्ने इब्राहिम खय्यामी था। वे उमर खय्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म सन 427 हिजरी शमसी में निशापुर में हुआ था। सन 510 हिजरी शमसी में उनका निधन हो गया। वे अपने काल में प्रचलित बहुत से विषयों में दक्षता रखते थे। उमर खय्याम दर्शन शास्त्री, गणितज्ञ, ज्योतिषी और प्रसिद्ध ईरानी साहित्यकार थे। वे अपने समय के बहुत से ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। उन्होंने गणित और ज्योमिति आदि विषयों के बारे में कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनको बाद की शताब्दियों में यूरोप वासियों ने बहुत अधिक प्रयोग किया।
सन 467 हिजरी गमरी में जब वे मात्र 27 वर्ष के थे, उन्हें विद्वानों और गणितज्ञों की सहायता से तत्कालीन कैलेंडर सही करने का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य को कई लोगों ने मिलकर किया। इसे पूरा करने में इस्फान की वेधशाला में 4 वर्षों का समय लगा। समय की सूक्ष्म जानकारी के लिए जलाली कैलेंडर को आज तक विश्व में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उमर खय्याम ने सन 470 हिजरी कमरी अर्थात 1077 ईस्वी में ज्योमिति के संबंध में भी एक किताब लिखी है, जिसमें यूक्लिडिस या यूक्लिड के ज्योमितीय सिद्धांतों की समीक्षा की गई है।
उमर खय्याम ने विभिन्न विषयों में किताबें लिखी हैं, परंतु गणित के क्षेत्र में उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उन्हें विशेष महत्व प्राप्त है। यद्यपि उमर खय्याम का स्थान उनके साहित्य से बहुत ऊपर है और उन्हें हुज्जतुल हक अर्थात सत्य की निशानी की उपाधि भी दी गई है, परंतु उन्होंने जो चौपाइयाँ लिखी हैं उनके कारण उन्हें विश्व ख्याति प्राप्त हुई है। उमर खय्याम ने जो चौपाइयाँ लिखी हैं वे विभिन्न भाषाओं में अनुवादित होकर प्रकाशित हो चुकी हैं। ब्रिटेन के बहुत बड़े शायर फिट्स जेराल्ड ने सन 1859 में उमर खय्याम की रुबाइयों या चौपाइयों का अंग्रेजी भाषा में जो अनुवाद किया उसे अंग्रेजी का एक शाहकार माना जाता है।
उमर खय्याम की कब्र निशापुर के एक बाग में है। उसी बाग में इमामजादा मारूक की भी कब्र है। इस महान ईरानी विद्वान की कब्र पर दक्ष ईरानी वास्तुकार हुशैंग सहोन ने एक सुंदर मकबरे का निर्माण किया है। इस सुंदर इमारत के निर्माण में ईरान की प्राचीन और वर्तमान निर्माण शैलियों का प्रयोग किया गया है। इस मकबरे की इमारत में कुल 10 स्तंभ हैं। इसके हर स्तंभ की ऊंचाई 12 मीटर है। इस इमारत का निर्माण वेधशाला के रूप में किया गया है। اس کے روشن دانوں سے ستاروں کو بہت اچھی طرح دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح عمر خیام کی قبر پر جو عمارت بنی ہے اسے انہی کی ربائیوں سے سسجت کیا گیا ہے۔ اسی پرکار جس باغ میں عمر خیام کی قبر ہے اس میں ایک پستکالے بھی ہے جس میں وبھن وشیوں کے بارے میں ملیہوان پستکیں ہیں جن سے ان کی قبر پر آنے والے لابھ اٹھا سکتے ہیں۔
ایران کے بہت بڑے آتم جانی اور کوی فرید الدین عطار نیشاپوری کی قبر بھی نیشاپور شہر کے نکٹ ہے، جسے دیکھنے کے لیے پرتی ورش ہزاروں لوگ وہاں جاتے ہیں۔ فرید الدین عطار نیشاپوری چھٹی شتابدی ہجری قمری کے انت اور ساتویں ہجری شتابدی کے آرمبھ کے مہان ایرانی آتم جانی ایوم پرسدھ شاعر ہیں۔ ان کا جنم سن 540 ہجری قمری کو نیشاپور کے قدقند کھیتر میں ہوا تھا۔ سن 618 ہجری قمری میں ان کا ندھن ہو گیا۔ 9 ہجری قمری میں ان کی قبر پر مقبرہ بنایا گیا جو اشٹکونی ہے۔ اس کی چھت کو سندر ٹائلوں سے سسجت کیا گیا ہے جس میں 4 پرویش دوار ہیں۔ عمارت کے بیچ میں عطار نیشاپوری کی قبر ہے اور وہاں پر اشٹکونی ایک استمبھ ہے جو 3 میٹر اونچا ہے۔ عطار نیشاپور بہت مہان کوی تھے۔ ودوانوں کے کتھنانوسار آتم گیان کے کھیتر میں وہ بہت مہان ویکتی تھے۔ عطار نیشاپوری کی پرسدھ رچناؤں میں اسرار نامہ، الہی نامہ، منطق الطیر، مصیبت نامہ، مختار نامہ آدی کا نام لیا جا سکتا ہے۔ منگولوں کے نیشاپور پر حملے کے دوران اس مہان پرسدھ ایرانی شاعر کو شہید کر دیا گیا۔
عطار نیشاپوری کی قبر کی بغل میں کمال الملک کی بھی قبر ہے۔ کلا میں روچی رکھنے والوں کے لیے کمال الملک کا نام جانا پہچانا ہے۔ وہ پرسدھ ایرانی چترکار تھے۔ وہ 19ویں شتابدی عیسوی کے آرمبھ کے کلاکار ہیں۔ انہوں نے چترکاری و کلاکاری کے کھیتر میں بہت سی نئی شیلیوں کا آوشکار کیا۔ محمد غفاری جو کمال الملک کے نام سے پرسدھ ہیں، قاجاری کال کے انتم ورشوں کے سب سے بڑے چترکار و کلاکار تھے۔ ان کا جنم 1847 عیسوی میں ایران کے کیندر میں استھت کاشان نگر میں ہوا تھا۔ اپنی آرمبھک شکشا پوری کرنے کے بعد وہ تہران آ گئے۔ انہوں نے اس سمے کے پرسدھ اسکول مدرسے دارالفنون میں شکشا گرہن کرنا آرمبھ کیا۔ چونکہ کمال الملک نے ایک کلا پریمی پریوار میں جنم لیا تھا، اس لیے بہت ہی کم سمے میں ان کے اندر کلا کی کشمتائیں و یوگیتائیں نکھر کر سامنے آنے لگیں، جن پر کلا اور گیان کے تتکالین ہستیوں نے دھیان دیا۔
ناصر الدین شاہ قاجار کے کال میں کمال الملک نے دربار کے کلا پریمی ورگ سے شکشا گرہن کی اور کچھ ہی سمے بعد کلا کے کھیتر میں وبھن مولیوان رچنائیں پیش کیں، جن میں سب سے پرسدھ تالار آئینے ہے۔ ایران میں تتکالین راجنیتک پریورتن کے کال میں کمال الملک نے یورپ کی یاترا کی اور وہاں پر انہوں نے اپنے پرواس کے دوران کلا کے کھیتر میں گہن ادھیان کیا۔ وہاں بھی کلا کے کھیتر میں وبھن مولیوان رچنائیں انہوں نے پرستت کیں۔ کمال الملک کا 92 ورش کی آیو میں سن 1319 ہجری شمسی میں نیشاپور میں ندھن ہو گیا۔ ان کی قبر پر مقبرہ بنا ہے جس میں 6 ہال ہیں۔ اس مقبرے کے آنترک بھاگ کو سفید اور نیلے رنگ کی سندر ٹائلوں سے سسجت کیا گیا ہے۔ کمال الملک کے مقبرے کے سامنے ایک پرتیما بنی ہے جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی پرسدھ ایرانی کلاکار کمال الملک کی یاد آ جاتی ہے۔ تو متروں، کارکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ آپ سے انمتی چاہتے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔ نیا سویرا،
मित्रों कार्यक्रम नया सवेरा की अगली कड़ी के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम एक अमरीकी महिला पुलिस अधिकारी के मुसलमान होने के बारे में चर्चा करेंगे। जहरा जैदी और मोहम्मद अली कुम्मी का सलाम स्वीकार करें।
इस्लामी शिक्षाओं में ये बात बल देकर कही गई है कि व्यक्ति को अपनी मौत के बारे में निश्चित नहीं होना चाहिए, उसको सदैव अपनी मौत को याद रखना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस नश्वर संसार से विदाई के बाद एक ऐसा संसार मौजूद है जहां पर मनुष्य को अपने कर्मों का हिसाब किताब देना होगा। मरने के बाद मनुष्य के कर्मों के हिसाब से ही यह तय पाएगा कि उसका स्थान कहाँ है, नरक में या स्वर्ग में। अर्थात मरने के बाद जीवन के अच्छे या बुरे होने की निर्भरता मनुष्य के कर्मों पर है। इस इस्लामी अनुशंसा का परिणाम यह होता है कि मनुष्य अपने जीवन में बुरे कामों से बचने लगता है और जीवन में अच्छे अच्छे काम अंजाम देने लगता है। पवित्र कुरान के सूरह हश्र की आयत संख्या 18 में इस बारे में ईश्वर कहता है कि हे ईमान लाने वालों, ईश्वर का अनुसरण करो और प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि उसने कयामत के लिए क्या भेजा है।
श्रीमती रैक्विल एवरी अमरीकी नागरिक हैं। वे पुलिस अधिकारी हैं। उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसमें वे मौत के मुंह में पहुंच गई थीं। ऐसे में उनको अपनी मौत सामने खड़ी दिखाई दे रही थी। इस स्थिति में वे ये सोचने लगीं कि मौत के बाद क्या होगा। उन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए वे कहती हैं कि उस समय मैं मौत के बिल्कुल निकट पहुंच चुकी थी। मैं ये सोच रही थी कि अब क्या होगा, मरने के बाद मेरा क्या होगा, क्या मैं नरक में डाल दी जाऊंगी। ये घटना सन 2002 की है। वे उत्तरी अमरीका के डेट्रॉयट नगर में अपनी ड्यूटी पर थीं। इसी बीच उन पर हमला किया गया। इस हमले में वे बुरी तरह से घायल हो गईं और मौत से उनका सामना हुआ, किंतु वे जीवित बच गईं।
अमरीकी महिला पुलिस अधिकारी रैक्विल एवरी की ये विशेषता थी कि अमरीकी संचार माध्यमों में इस्लाम विरोधी दुष्प्रचारों के बावजूद उनके मन में मुसलमानों के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं थी। वे मुसलमानों को बुरा समझकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती थीं। उनकी सोच का महत्व उस समय अधिक बढ़ जाता है जब वे एक पुलिस अधिकारी हैं, अर्थात उनके पास कार्रवाई करने का अधिकार है, किंतु वे किसी पूर्वाग्रह के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं करती। इसका मुख्य कारण यह है कि अमरीकी पुलिस इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के विरुद्ध दुर्भावना के साथ व्यवहार करती है। अमरीकी पुलिस में अश्वेतों के खिलाफ घृणा पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वो उनके खिलाफ हिंसक कार्रवाइयां करती रहती है। अमरीकी पुलिस हमेशा ही अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ बुरे ढंग से व्यवहार करती है।
इस संदर्भ में श्रीमती रैक्विल एवरी कहती हैं कि जब भी अमरीकी पुलिस अश्वेतों या मुसलमानों के विरुद्ध बुरा व्यवहार करती थी तो मुझको इससे बहुत तकलीफ होती थी। वे कहती हैं कि मैंने ये महसूस किया कि 11 सितंबर की घटना के बाद से मुसलमानों के विरुद्ध अमरीकी पुलिस का व्यवहार द्वेषपूर्ण हो गया है। ये वे बातें थीं जिनके कारण मैं बहुत अपसेट रहने लगी थी। मेरा ये मानना था कि हर मुसलमान को आतंकवादी मानकर उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जा सकता। अच्छे और बुरे लोग तो हर धर्म और हर समाज में पाए जाते हैं। अमेरिका में मुसलमानों के विरुद्ध पुलिस की बढ़ती हिंसक कार्रवाइयों से रॉकेल एवरी बहुत चिंतित थीं। ये मामला उनके इस्लाम स्वीकार करने की भूमिका बना। हालांकि उस समय तक वे मुसलमान नहीं हुई थीं, किंतु उन्होंने मुसलमान बनने की ठान ली थी। वे कहती हैं कि मुसलमानों के विरुद्ध अमरीकी पुलिस की कार्रवाई में कभी भी मैंने पूर्वाग्रह के साथ काम नहीं किया, बल्कि अपराध को ही आधार मानकर मैं कार्रवाई करती हूँ। मुसलमान बनने से पहले के बारे में वे कहती हैं कि मुसलमान बनने से पहले मैं किसी धर्म विशेष में आस्था नहीं रखती थी, किंतु मेरे मन में ईश्वर के प्रति आदर और सम्मान था। मैं संसार के लिए एक बनाने वाले पर विश्वास रखती थी। मैं इस्लाम की समर्थक या उसकी विरोधी नहीं थी। अन्य धर्मों के मानने वालों का मैं सम्मान करती थी और किसी भी धर्म का मैंने कभी विरोध नहीं किया। मेरे विचार में परिवार के सदस्यों की सोच से मेरे सारे विचार अलग थे। जब रैक्विल एवरी पर हमला किया गया और वे मौत के निकट पहुंची तो उनके मन में ये सवाल पैदा हुआ कि मरने के बाद उनका क्या होगा। उनकी इसी सोच ने उनके विचारों को बिल्कुल ही बदल कर रख दिया। उनकी दोस्ती कुछ मुसलमानों से थी जिसके कारण उनको इस्लाम के बारे में थोड़ी बहुत समझ थी। हमले की घटना के 10 वर्षों के बाद काफ़ी खोजबीन करने के पश्चात रैक्विल एवरी ने इस्लाम को अपना लिया। इस बारे में रैक्विल का कहना है कि हमले की घटना ने मुझको पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब मुझको मौत से डर नहीं लगता, अब मैं केवल अल्लाह से डरती हूँ। हम नहीं जानते कि कल जिंदा रहेंगे या नहीं, इसलिए मुझको अब मौत से डर नहीं लगता। मेरी ये स्थिति मुसलमान बनने के बाद हुई है।
अमरीकी मुसलमान महिला रैक्विल एवरी का कहना है कि इस्लाम जीवन गुजारने की सबसे अच्छी जीवन शैली है। यह स्वयं एक संस्कृति और सभ्यता भी है। वे कहती हैं कि मैंने पहले तो इंटरनेट से इस्लाम को जानने के प्रयास किए। शुरू में मेरे लिए कई प्रकार की समस्याएं भी पेश आईं। मैंने अकेले ही अपना काम किया और इस मार्ग पर बढ़ती चली गई। रैक्विल एवरी कहती हैं कि मेरा यह अनुभव बहुत ही अभूतपूर्व था। वे कहती हैं कि मैंने अंग्रेजी भाषा के अनुवाद वाला कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था। अब मैं नमाज भी पढ़ने लगी थी। नमाज पढ़ने से मुझको शांति का आभास होता था। मुसलमान बनने के बाद ये बात मेरी समझ में आई कि इस धर्म की मूल शिक्षाएं अरबी भाषा में हैं, अतः मुझको ये भाषा सीखनी चाहिए। मैंने अब अरबी सीखनी शुरू कर दी है। वे कहती हैं कि मैंने मस्जिद जाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दिया था। मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने से जहां मुझको विशेष आनंद आता था, वहीं पर इस काम से मेरी जानकारी में तेजी से वृद्धि हो रही थी। मुझको बहुत सी बातें मस्जिद जाने से समझ में आईं। इसी के साथ मस्जिद में आने वाले लोगों ने भी मेरी बहुत सहायता की। मुझको बहुत सी बातें उनसे सीखने को मिली। मस्जिद में मेरे कई दोस्त बन गए थे और वहां पर नमाज पढ़ने वाले मौलाना ने भी मुझको मेरे हर सवाल का जवाब देकर संतुष्ट कर दिया था। रैक्विल एवरी कहती है कि मस्जिद वास्तव में ऐसा बहुउद्देशीय स्थल है जिसके बारे में इससे पहले मैंने सोचा भी नहीं था। अमेरिका की जिस मस्जिद में मैं जाती थी, वहां से लोगों की सहायता के लिए कुमक भेजी जाती थी। नमाज के लिए मस्जिद में आने वाले लोग कपड़े, खाने पीने की चीजें, पैसे और अन्य वस्तुएं अपने साथ लाते थे जो गरीबों और जरूरतमंदों को दिए जाते थे। मैंने भी लोगों की जरूरत की बहुत सी वस्तुएं लाकर मस्जिद में रख दी थी। इस मस्जिद की एक विशेषता यह थी कि यहां से दो प्रकार से मदद की जाती थी। एक तरीका यह था कि लोगों को मदद भेजी जाती थी और दूसरा तरीका यह था कि बड़ी बड़ी मेजों पर जरूरत का सामान रख दिया जाता था। बाद में जिसको जिस चीज की जरूरत होती थी उसको वो उठा लेता और बाकी चीजों को हाथ तक नहीं लगाता था। मुझको ये शैली अधिक पसंद आई। اس امریکی مہیلا پولیس ادھیکاری نے مسلمان بننے کے بعد حجاب یا پردہ کرنا شروع کر دیا۔ اس بارے میں ان کا کہنا تھا کہ حجاب بہت ہی اچھی چیز ہے، اس کو مہیلا کے لیے کوچ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ واسطو میں حجاب پہن کر مہیلا بہت سی برائیوں سے سرکشت ہو جاتی ہے۔ حجاب پہننے سے میں خود کو ادھک سرکشت محسوس کرتی ہوں۔ مسلمان بننے کے بعد سے میں خود کو بہت ہی بھاگیشالی محسوس کر رہی ہوں۔ اب مجھ کو وشواس ہو چکا ہے کہ میرا بھوشیہ اجول ہے۔ دوستو، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیں۔ پروگرام کیسا لگا اس بارے میں آپ کے وچاروں کا انتظار رہے گا۔
تو دوستو، ابھی آپ نے کاریکرم نیا سویرا سنا، اور اب آپ مکھیہ سماچاروں کا سارانش ایک بار پھر سے سن لیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ برٹین، فرانس اور جرمنی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ امریکہ کے سمبھاوت ودیش منتری نے پرمانو سمجھوتے میں واپسی کا سنکیت دیا ہے۔ برٹش میڈیا نے روسی راشٹرپتی کے کینسر گرست ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارت کے پورو اپراشٹرپتی کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس سے پہلے ہی بھارت دھارمک کٹرتا اور آکرامک راشٹرواد جیسے وائرس کا شکار ہو چکا تھا۔ تو دوستو، ہم آشا کرتے ہیں کہ ہمارا پریاس آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کاریکرموں کے بارے میں اپنے وچاروں اور پرتکریاؤں سے ہمیں اوشیہ اوگت کرواتے رہیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے hindi@ws.irib.ir۔ دوستو، وسترت سماچاروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ اور آپ چاہے تو ہمیں فیس بک پر بھی سمپرک کر سکتے ہیں۔ فیس بک پر ہمارا پیج ہے facebook.com/irib hindi۔ واٹس ایپ پر ہمارا سمپرک نمبر ہے 00989035065492۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ یہ سبھا یہیں پر سماپت ہوتی ہے۔ مریم میر دادی کو انمتی دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.